Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original.
Hi and welcome to Man Ki ABC. यहाँ मैं अंशुमा आपसे आपके मन के बारे में बातें करने आई हूँ. मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और एक क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपिस्ट भी, और अपनी कंपनी कलर ऑफ ग्रे सेल्स के जरिए मेंटल हेल्थ की एडवोकेसी करती रहती हूँ. बस उसी सिलसिले में सोचा आपसे भी बातें कर लूँ और हर हफ्ते ABCD करते हुए एक एक करके आपके मन के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हम डिस्कस कर लेंगे. इस पॉडकास्ट को जरा आराम से सुनिए, क्योंकि कभी हम मेडिटेशन करेंगे, कभी कोई कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो कभी किसी और के साथ बातें करेंगे, बट रखेंगे माहौल सिंपल एंड रिलैक्स्ड. क्या है ना, मन की ABC समझ लो तो लाइफ थोड़ी और इजी हो जाएगी. थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस एपिसोड. ग्रीफ वर्ड वैसे सुनते ही लोग हेजिटेट करते हैं. इट्स अ बिग वर्ड ना, जी से ग्रीफ. वर्ड सुनते ही ऐसे लगता है जैसे भारी सा हो. लोगों ने इसे बहुत समझने की कोशिश करी है. देर आर मॉडल्स ऑफ ग्रीफ, थ्योरीज अराउंड हाउ टू डील विथ लॉस एंड ग्रीफ, बट स्टिल थोड़ा सा इनएक्सेसिबल सा लगता है. डीलिंग विथ लॉस इज एक्चुअली अ वेरी पर्सनल प्रोसेस. कौन कैसे रिएक्ट करता है इसको परफेक्टली कोडिफाई नहीं कर सकते. ये कोई एक इमोशन नहीं ना, ग्रीफ इज अ प्रोसेस. ग्रीविंग इनएविटेबल है, और जितना इनएविटेबल है उतना ही अनप्रिडिक्टेबल भी. हमें लगता है कि वी नो हाउ वी वुड रिएक्ट टू लॉस, बट व्हेन एक्चुअल लॉस हैपेंस हम सब थोड़े से लॉस्ट हो जाते हैं. इवन इफ यू हैवंट लॉस्ट समवन, ग्रीफ कैन बी रिलेटेड टू एनी लॉस. यू कुड बी ग्रीविंग द लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, इवन अ ड्रीम. आफ्टर आवर लास्ट एपिसोड अ क्लाइंट रीच्ड आउट टू मी एंड आस्क्ड मी फॉर अ सेशन. आई विल चेंज हर नेम फॉर एनोनिमिटी, बट सुनैना was basically asking कि क्या losing a house can also cause feelings of grief. जब हमने और बात की तो she started saying कि बहुत time से she always wanted to own a house. जैसे हम छोटे थे तो अपना future imagine करते थे ना, and maybe आपके लिए that might be your future job or wedding or being a mother. For Sunaina, it was a house. She had a tough childhood, and as a result of that, she would always look at leaving home as an ideal state. सुनैना ने अपने नए घर के हर कोने को बचपन में ही सजा लिया था. शी वर्क टूवर्ड्स इट टायरलेसली. धीरे धीरे करके शी बिल्ट अ लाइफ विद अ पार्टनर एंड फाइनली गॉट द हाउस ऑफ हर ड्रीम्स. बट देन ये पैंडेमिक के चलते फाइनेंशियल लॉस के कारण दे हैड टू गिव इट अप. इस लॉस से उसके पार्टनर को इतना धक्का नहीं लगा, बट सुनैना फेल्ट ब्रोकन एंड शी केप्ट ब्लेमिंग हरसेल्फ. Why can't I come out of it? Appetite, sleep, job, relationship, हर चीज पे इफेक्ट पड़ने लग गया. And her partner could not understand why is she reacting this way. Even she couldn't understand it. When she came to therapy, she kept saying, अजीब सा depression है. शायद my partner will also leave me क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा. ये तो बहुत time के बाद समझ आया कि leaving that house was a huge event of trauma for her. Yes, grief can be the loss of a dream. All your feelings of anger, sadness and loss are valid. Grief or trauma ka koi parameter nahi hai. No one should tell you that you should not grieve something. Your grief is valid because you nurtured something. Whether it was a relationship, loved one or job, aapki feelings or future thought usme invested tha. Is pandemic mein humne bahut grief dekha. Besides the loss of life, there was also a huge loss of quality of life. And we really need to learn more compassion towards ourselves and others, because that is the only way through grief. Hum grief ko circumvent nahi kar sakte. We have to learn how to move through it. And if you're feeling right now as you're listening to this, that this is getting heavy for you, let's move right now. Feel free to move, stretch, yawn, breathe. ये बातें भी heavy है ना. Also, as a therapist, I can tell you, there is no one size fits all. Grief is personal, and if you are seeing signs of grieving, talk to someone about it. मन नहीं लगना, किसी feeling से उभर नहीं पाना, एक sense of helplessness या persistent anger or frustration, these are all signs of grieving and other trauma related to grief. बिसाइड्स दिस बॉडी में भी साइंस आते हैं. इट कैन लुक लाइक डिटैचमेंट, डिसोसिएशन, बींग अनएबल टू मूव और इवन पैनिक अटैक्स, लॉस ऑफ एपेटाइट और स्लीप. इन साइंस को प्लीज इग्नोर मत कीजिए. ग्रीविंग के लिए वॉट इज प्रूवन टू बी मोस्ट सक्सेसफुल इज ए लविंग एंड कंपैशनेट कम्युनिटी. हमारा लॉस कभी छोटा नहीं होता, बट इस लॉस के अराउंड हमारी लाइफ बढ़ जाती है. वी लर्न हाउ टू लिव विद इट एज अ पार्ट ऑफ अस. कुछ टाइम के लिए कुछ और नहीं दिख पाता, बट धीरे धीरे वी आर एबल टू सी दैट लाइफ इज बिगर दैन द लॉस इटसेल्फ, एंड परहैप्स दैट्स वेयर वी स्टार्ट टू लिव अगेन. ऑल्सो लॉस की फीलिंग को कंपेयर मत कीजिए. इट्स रियली नॉट ओके टू टेल समवन हु इज ग्रीविंग इतना बुरा नहीं हुआ, इट कुड हैव बीन वर्स, और लुक एट द ब्राइट साइड. क्योंकि व्हेन समवन इज सिटिंग विद दिस सेंस ऑफ लॉस, ये सब बातें कंफर्ट नहीं डिसमिसिव लगती हैं. सो व्हेन वी आर डीलिंग विद समवन हु इज डीलिंग विद लॉस, इट्स बेस्ट टू जस्ट बी जेंटल एंड आस्क देम व्हाट डू यू नीड. एंड हो सकता है इस सवाल का जवाब कुछ टाइम बाद आए. Yeah, they might just need silence. We have to be a bit patient with grief. अपने grief के लिए भी और दूसरों के लिए भी. The biggest skill we can learn is how to sit with it, without wanting to just get it over with. कभी कभी the best thing you can do is just be there until the grief itself moves and makes room for other feelings. And talking about moving through grief, हालांकि ग्रीफ बहुत पर्सनल होता है, बट काफ़ी रिसर्च के बाद एक मॉडल जो कि बहुत सक्सेसफुल पाया गया है, लेट्स डिस्कस दैट. दिस इज़ द मॉडल बाय कूबलर रॉस एंड इट वाज डेवलप्ड एट अ टाइम वेयर देर वाज अ लॉट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स एंड देर वाज अ लॉट ऑफ रिसर्च अराउंड ग्रीफ एंड लॉस एंड ट्रामा. और उस समय ये पता लगा कि कुछ स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू ग्रीफ मूव करता है. Now, before I explain these stages, I want to give a little disclaimer. कि जरूरी नहीं कि everyone goes through all the stages, या हर स्टेज एक क्रोनोलॉजी में आए और जाए, या कोई भी स्टेज कंप्लीट होने के बाद कोई इमोशन या फीलिंग रिपीट ना हो. But let's understand them anyway, to just understand grief as a common experience. और हो सकता है इसमें आपको अपनी झलक दिख जाए. To the first stage, that's denial. डिनाइल का मतलब किसी चीज़ की रियलिटी को डिनाई कर देना, ऐसे एक्ट करना जैसे कोई ट्रॉमा हुआ ही नहीं, ये लॉस सच्चाई नहीं है. इसके बाद आता है एंगर. इस स्टेज में आपको हो सकता है किसी इंडिविजुअल पे, अपने सपोर्ट सिस्टम पे, सर्कमस्टांसिस पे या किसी और पे बहुत गुस्सा आए. एंड ये होता है क्योंकि यू नो वी आर वेरी हर्ट. व्हाटएवर हैज हैपेंड, ऑल दिस लॉस, दिस वॉज नॉट इन आवर प्लान. And now everything has to change, and that makes us angry. Bargaining वाली stage का मतलब जैसे आप अपने मन में compensate करने लग जाते हैं कि अगर मैं ये कर दूँ या मैं अच्छा कुछ सोचूँ तो शायद मुझे इस loss से deal ना करना पड़े. You also make a lot of what if scenarios and think about all the ways in which you can avoid feeling this pain. And after this feeling, sometimes a depression can take over. इसमें it really starts hitting you कि ये loss कितना permanent है. और इसको deal करने के पहले we feel that sense of sadness because any change means the loss of something. During this time, helpless, hopeless and especially energyless feel करना normal है. एक्सेप्टेंस की स्टेज तब आती है जब आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में असिमिलेट करने लग जाते हैं. और जैसे मैंने पहले कहा था ना, ग्रीफ कम नहीं होता, हमारी लाइफ जैसे उसके आसपास बढ़ जाती है. सो वी स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग आवर लाइफ टू अकोमोडेट दिस लॉस. इन सब स्टेजेस का आना जाना ये तो होता रहता है, बट वॉट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज ड्यूरिंग ईच स्टेज यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. भले ही इट्स अ वॉक, राइटिंग, टॉकिंग, मेकिंग आर्ट, गोइंग फॉर अ ड्राइव, वॉट एवर इट इज दैट इज फॉर यू अ मीडियम ऑफ सेल्फ केयर टू हेल्प यू मूव थ्रू दिस. Now you see, as a creative arts therapist, I am partial to expressing through art. And आज जब हम इसी बारे में बात कर रहे थे, तो suddenly मेरी producer को याद आया कि she had written a poem about moving through these stages herself. So अब I'm handing you over to Deepti as she takes us through her movement, through grief, through her art, her poetry.
Thanks, Anshuma. और अभी अंजुमा ने ये तो बोल दिया कि शी इज़ हैंडिंग यू ओवर टू मी, तो अब नो प्रेशर एट ऑल, है ना अंजुमा? ये पोएम मैंने लिखी थी मेरे ख्याल से 2 साल पहले. मैं अपना एक ग्रीफ प्रोसेस कर रही थी, जो मतलब मैं अपनी दादी का लॉस प्रोसेस कर रही थी, और मेरी दादी मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले ही गुजर गई थी. तो इतना टाइम लगा मुझे इन चीज़ों को प्रोसेस करने में. तो अगर अंशुमा ये बोल रही है कि आपको अपना खुद का टाइम लेना चाहिए और कोई भी चीज़ सही गलत नहीं होती है, सारी फीलिंग्स वैलिड होती हैं, मैं उसका एक जीता जागता एग्जांपल हूँ. चलिए फिर पढ़ते हैं. दीज आर माई स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. मेरी खुशी पर एक साया सा मंडराता है, झुलसती धूप में एक शराब सा नजर आता है. तू सैलाब है माजी का या महज एक मुस्तकबिल नज़ारा है? तू कहत है मेरे टूटे दिल का या खुद मुख्तारी का एक रेशमी जाला है? मुझे मालूम नहीं कि तू मेरी ज़िंदगी में किस हैसियत से आया है. शायद मेरा तुझे समझना परखना ज़िंदगी के मकसद की ओर एक इशारा है. शायद जीना इसी का नाम है. मेरे नकारने पर भी तू ज़बरदस्ती मेरे जहन में घुस आता है, मुकीम होकर मेरे दर्द को सवालों के बोझ तले कुचलता चला जाता है. क्या तू अक्स है जहन्नुम का या मेरे मुकद्दर की शरारत है? क्या तू अस्त्र है मेरे फैल का या बद्दुआओं की इमारत है? मुझे मालूम नहीं कि तूने मेरी ज़िंदगी में बेइजाज़त क्यों सवाल उठाया है. शायद मेरा तुझे जवाब देना ही मेरे मजबूर आंसुओं का इरादा है. शायद जीना इसी का नाम है. फिर जब मेरा पारा चढ़ते चढ़ते बर्फीले शिखर तक पहुंच जाता है, तेरे छूने से चुटकी में मोम की तरह पिघल आता है. तू छज्जा है ननिहाल का, तू छज्जा है ननिहाल का या वालदे के रूह की गर्माहट है? तू सहारा है मेरे जिगरी यारों का या जमाने से जिल्लत की घबराहट है? मुझे मालूम नहीं कि तू मेरी ज़िंदगी में किस मकसद से आया है. शायद तेरा मुझे ललकार कर हराना ही मेरे उबलते खून के लिए जश्न बहारा है. शायद जीना इसी का नाम है. पर फिर मेरे गम पर भी एक ठंडी छांव सा तू बनाता है, शोक हवाओं में तू जरी लहरों सा गुनगुनाता है. क्या तू फलसफा है मेरे तजुर्बों का या खुदा के घर का दरवाजा है? क्या तू फरिश्ता है मेरे अपनों का या डूबते को तिनके का सहारा है? मुझे मालूम नहीं कि तू मेरी जिंदगी में क्या सबक देने आया है. शायद मेरा तुझे बिन पूछे ही अपना लेना मेरे दिमाग के उलझे हुए धागों को गवारा है. शायद जीना इसी का नाम है. सौदा करने निकलती हूँ अपनी खुददारी का, सौदा करने निकलती हूँ अपनी खुददारी का, तो तू उसे भी लूट खाता है. नंगे कमज़ोर जिस्म पर तू अजगर की तरह लिपट जाता है. क्या तू खात्मा है मेरे वजूद का, क्या तू खात्मा है मेरे वजूद का या मेरे सफ़र में सिर्फ एक रुकावट है? क्या तू चेहरा है अज़राइल का या कायनात की डरावनी खामोशी में एक आहट है? मुझे मालूम नहीं कि तू मेरी ज़िंदगी में क्या किरदार निभाने आया है. शायद तेरा मुझे बेइज्जत करना मेरे जनाजे की चादर पर 4 चांद और 1 सितारा है. शायद जीना इसी का नाम है। बस बस अब मंजूर है मुझे जो भी तूने मेरे नसीब में लिखा है। बस अब मंजूर है मुझे जो भी तूने मेरे नसीब में लिखा है। मेरे हाथों की लकीरों में तेरी मर्जी का गहरा रंग दिखता है। क्या चाहता है तू, क्या चाहता है अब तू, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर। बदले की आग में झुलस चुकी हूँ, मरहम लगाने दे अपनी सूखी बेजान खाल पर। मुझे मालूम नहीं कि तू मेरी जिंदगी में किस गलती की सजा देने आया है। शायद मेरा तुझे जान कर भी अनजाना समझ लेना मेरी सलामती का एक ख्वाबीदा नज़ारा है। शायद
तो लगता है जीना इसी का नाम है। थैंक यू दीप्ति, एंड थैंक यू एज वेल फॉर स्टेइंग टू द एंड। इट्स डिफिकल्ट ना टू सिट विद दीज इमोशंस, बट इफ वी लर्न टू असिमिलेट दिस इन आवर लाइफ एंड लर्न दैट दिस ग्रीफ इज नॉट अ स्टॉप बट इट्स अ पॉज, तो इस प्रोसेस से हमें बहुत सारी सेल्फ अवेयरनेस और इंसाइट भी मिल सकती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे गिल्ट, रिग्रेट, शेम, जो ग्रीफ से हमें डरा देती है। बट ग्रीफ इज ऑल्सो अ साइट फॉर रिचनेस एंड डेप्थ एंड समटाइम्स पोएट्री। इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना तो वील टॉक अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट। एच, एच फॉर हैप्पीनेस।
तो ये था आज का लेटर, और अगले हफ्ते एक नए लेटर के साथ मैं फिर आऊंगी। मैं हूं अंशुमा, आपकी होस्ट, एंड इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम @ कलर ऑफ ग्रे सेल्स, दैट इज @ COLOUR ऑफ GREYCELLS। और इसके अलावा टू गेट मोर अपडेट्स ऑन मन की ABC, यू कैन फॉलो @HTSmartcast ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्लब हाउस, यूट्यूब या लिंक्डइन। एंड टू लिसन टू मोर पॉडकास्ट, लॉग ऑन टू HTSmartcast.com और सुनो नए नजरिए से।
This was an HD Smartcast original.
HD Smartcast.